नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी मीडिया हेड नवीन जिंदल के खिलाफ पैगंबर पर टिप्पणी के मामले में कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा को जांच पूरी होने तक पार्टी की सदस्यता से सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि नवीन जिंदल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पार्टी ने कार्रवाई की है। कुवैत, कतर और ईरान ने अपने देशों में भारत के राजदूतों को बुलाया और विरोध दर्ज कराया। साथ ही अरब देशों में सोशल मीडिया पर भारतीय उत्पादों के बहिष्कार के लिए ट्रेंड भी चलाए गए। कतर ने बयान में कहा, वो भारत सरकार से सार्वजनिक माफ़ी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद कर रहा है। इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सज़ा के जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। ये हिंसा और नफरत का एक चक्र पैदा करेगा। विवाद ऐसे समय में आया है जब भाजपा को जानने के लिए नामक अभियान के माध्यम से कई देशों तक पहुँच बना रही है। सूत्रों ने बताया कि गल्फ क्षेत्र के कुछ देशों के राजदूतों के साथ इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं और आने वाले समय में कई और बैठकें होने की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 7 अधिकारियों की टीम ने ये छापे उनके दिल्ली स्थित आवास के साथ उनसे जुड़े हुए कई अन्य ठिकानों पर करीब 7 बजे मारे गए हैं। ये मामला 2017 में आप नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जहां उन पर कथित रूप से जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था। पिछले महीने ईडी ने इन कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। ये संपत्तियाँ अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्वाति जैन, सुशीला जैन, अजीत प्रसाद जैन और इंदु जैन की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। पंजाब के अमृतसर से सोमवार को एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सिखों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्वर्ण मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने एकत्रित होकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। इसके साथ बड़ी संख्या में ये लोग भिंडरावाले के पोस्टर हाथ में लिए हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी होने के चलते अमृतसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। वहीं स्वर्ण मंदिर तक भी किसी भी वाहन को जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर खालिस्तानी समर्थक स्वर्ण मंदिर तक कैसे पहुंचे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को राज्य के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। मान ने इस बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को 6 जून से पहले सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने का आदेश दिया था। इस दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा था कि राज्य में किसी को भी शांति भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उससे शांति से निपटा जाएगा। कांग्रेस ने सोमवार को घोषणा की कि वो उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ सीटों पर लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि हाल ही के विधानसभा परिणामों को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए पुनर्निर्माण सबसे पहले महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव के महीनों बाद 23 जून को आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले महत्वपूर्ण लोकसभा उपचुनावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। आयकर जांच विभाग की मुंबई इकाई ने मार्च 2022 में रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ 2015 काला धन अधिनियम के तहत एक आदेश पारित किया। काला धन अधिनियम आदेश 2019 में पहली बार कथित अघोषित संपत्ति पर उद्योगपति को नोटिस जारी करने के बाद दायर किया गया था। अनिल अंबानी को जांच टीम ने सवाल भेजे थे, लेकिन उन्होंने उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। बीएमए आदेश को 2 अपतटीय आश्रयों बहामास और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूहों में अनिल अंबानी की संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व का विस्तार करने के लिए समझा जाता है। बहामास में अनिल अंबानी ने 2006 में एक अपतटीय कंपनी ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक के साथ डायमंड ट्रस्ट की स्थापना की। सीबीडीटी द्वारा विदेशी कर और कर अनुसंधान डिवीजन के माध्यम से बहामा को भेजे गए अनुरोधों के बाद पता चला कि इसका स्विस बैंक खाता यूबीएस बैंक की ज्यूरिख शाखा में है। आदेश में अपतटीय संस्थाओं और लिंक किए गए बैंक खातों में 800 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि ये आंकड़ा मौजूदा रुपया डॉलर दर के आधार पर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से आने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और रामपुर से आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट देने का फैसला किया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।